नमस्कार भारत, आज है 19 मार्च दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। योगी आदित्यनाथ आज लेंगे उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे मौजूद।
उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं।
मुस्लिम विरोध की राजनीति करते रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुस्लिमों के मन में पैदा हो रहे हैं संदेह।
मोदी जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यकीनन उसका इनका लॉगिन नेम डेवलपमेंट है, मगर उसका पासवर्ड सिर्फ हिंदुत्व है।
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल में, कांग्रेस से आए 5 विधायक बने मंत्री। पार्टी के असंतुष्टों को साधना रावत के लिए होगी चुनौती। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश में भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शपथ लेंगे। कल विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में सभी का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। फ्रांस के सुरक्षा बलों ने पेरिस के ओर्ली एयरपोर्ट पर तैनात एक सैनिक की बंदूक छीनने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को मार गिराया है। अधिकारियों के मुताबिक जियेद बेन बेलगासेम नाम के इस शख्स ने एक सुरक्षा कर्मी पर यह कहते हुए हमला किया कि वो अल्लाह के लिए मरना चाहता है। इससे पहले शनिवार को 39 साल के व्यक्ति पेरिस क्षेत्र में हुई गोलीबारी और कार चुराने की घटना में भी शामिल थे। अभियोजकों ने इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पेरिस के अभियोजक फ्रांस्वा मोलेंस ने इसके बारे में ये जानकारी दी।
Il a attrapé cette dernière avec son bras gauche.
फ्रांस्वा मोलेंस कह रहे हैं कि उसने महिला सुरक्षाकर्मी को पकड़ लिया और उस पर बंदूक तानकर उसे ढाल बना लिया। उसने महिला सुरक्षाकर्मी और अन्य 2 सैनिकों को धमकी दी। इन लोगों के बयानों के आधार पर पता चला है कि वो कह रहा था कि वो अल्लाह के लिए मरना चाहता है। ये थे फ्रांस्वा मोलेंस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने टोंगचांग री रॉकेट लॉन्च स्टेशन में एक नया विकसित इंजन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस परीक्षण को सफल बताया है और कहा है कि इससे उत्तर कोरिया को दुनिया में बेहतरीन सैटेलाइट लॉन्च की क्षमता हासिल हो जाएगी। हालांकि इस समाचार की पुष्टि किसी और स्वतंत्र स्रोत से नहीं हुई है। इसकी जानकारी उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने ही दी है। इस बीच अमरीका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम को जारी रखने की सूरत में सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण के लिए ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। G20 देशों की वार्षिक बैठक में दुनिया के विकसित देशों के वित्त मंत्री मुख्य व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्धता पर सहमति नहीं बना सके हैं। जर्मनी के बादन बादन शहर में हुई बैठक के अंत में जारी बयान में किसी भी तरह से संरक्षणवाद की नीति का विरोध करने का जिक्र नहीं किया गया। अमेरिका ने संरक्षणवाद की नीति का विरोध करने की शर्त को खारिज करना चाहता था। अमेरिका के ट्रेजर सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन ने कहा कि वॉशिंगटन व्यापार को मजबूत करना चाहता है, लेकिन G20 देशों के बयानों में संरक्षणात्मक नीति का विरोध करने के खिलाफ है। जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगैंग शॉबल G20 देशों को अमेरिका की नापसंद भाषा का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा है, जबकि फ्रांस के वित्त मंत्री मिशेल सैपिन ने इस बारे में निराशा जताई है। जब कोई व्यापारिक मुद्दा हो तो उसमें एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा समाधान निकालना चाहिए। इसलिए हमारे दस्तावेज में आप देखेंगे कि हम एक तरफा संरक्षणवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एक खतरा है। अगर हम अमेरिका की बात मान लेते तो न सिर्फ G20 देशों के रवैया नर्म होता, बल्कि अपने पहले के फैसले से भी हमें पीछे हटना पड़ता। इस पर सहमति नहीं बन पाई तो हमने एक समाधान निकाला कि इसके बारे में कुछ कहा ही न जाए। ये थे मिशेल सैपिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में करीब 30,000 तुर्की मूल के कुर्दों ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कुर्द नववर्ष नौरोज के मौके पर जर्मनी के कई शहरों से हजारों कुर्द लोग फ्रैंकफर्ट पहुंचे थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में तमाम कयासों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के साथ दिनेश शर्मा और केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। आज योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के दूसरे सदस्यों के साथ लखनऊ में शपथ लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों महत्वपूर्ण पद उन व्यक्तियों को दिए गए हैं जो पार्टी के नवनिर्वाचित 300 से ज्यादा विधायकों में शामिल नहीं है। इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
करीब एक हफ्ते से मुख्यमंत्री पद के लिए जो तमाम नाम चल रहे थे उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आखिर में लिया जा रहा था, लेकिन शनिवार शाम जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई उस दिन सुबह से ही ये आभास होने लगा था कि योगी का नाम अब पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे है। पिछले दो दिनों से मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा मनोज सिन्हा के नाम की हो रही थी। मनोज सिन्हा भी शायद इसके लिए तैयारी कर रहे थे और वाराणसी में मंदिरों में दर्शन करने के बाद अपने गृह जनपद गाजीपुर पहुंचे और वहां से लखनऊ आने की तैयारी में थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली में थे, जबकि लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सुबह से ही दोनों के समर्थक जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। ऐसा लगता है कि इसका असर पार्टी के आला कमान पर भी हुआ और कुछ ही घंटों के भीतर फैसला बदल दिया गया। मुख्यमंत्री पद पर नामित होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा,
गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पद पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं।
योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हैं, जबकि दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी के 300 से भी ज्यादा विधायकों में क्या कोई मुख्यमंत्री की योग्यता वाला व्यक्ति नहीं मिला। ये सवाल राजनीतिक हलकों में भले ही चर्चा में हो, लेकिन पार्टी समर्थकों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता।
विधायक भी हमारे योग्य, अभी उनको मंत्री बनाया जाएगा, उनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा।
नहीं, क्यों नहीं, अहमियत होती है। उत्तर प्रदेश की जन जन आकांक्षाओं की आवाज थी योगी। हर बच्चा कह रहा था, जैसे पूरे देश में मोदी जी की मांग थी, ऐसे ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश में योगी जी की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व जो बोलता है वो स्वीकार है, लेकिन यहाँ तो जनता ने बोला है, योगी को स्वीकार किया है।
आपने तो फिर देखा होगा, अगर इतना भरोसा था तो योगी को पहले ही घोषित करना चाहिए था।
अगर मगर तो सब छट गया है उत्तर प्रदेश में।
नहीं सर, किसी विधायक को चुना जाता अच्छा नहीं होता, सबसे अच्छा योगी है, क्योंकि यूपी में जितना भ्रष्टाचार है वैसा ही अगर मुख्यमंत्री सीएम आएंगे तभी दूर हो पाएगा।
बहरहाल नई सरकार आज शपथ लेगी और उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दिनेश शर्मा और केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री भले ही बनाए गए हों, लेकिन ये दोनों भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि नई सरकार के सामने न सिर्फ घोषणा पत्र के वादे पूरी करने की चुनौती होगी, बल्कि सबके साथ समन्वय बनाकर चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
योगी आदित्यनाथ एक अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और अब तक खुलकर मुसलमानों के विरोध की बातें करते रहे हैं। ऐसे में मुसलमान नेताओं के जहन में बीजेपी की नीयत को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी से यही सवाल पूछा।
किसी भी पार्टी को उनके कैंडिडेट का इंतखाब करना ये उनका राइट है, मगर जिस तरीके से आज जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है, ये एक पैगाम देता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं एक न्यू इंडिया को बनाना चाहता हूं, तो शायद वो न्यू इंडिया की अब तामीर कर रहे हैं। इस तरह से अगर वो फैसला लेना चाह रहे हैं तो वही उसका पैगाम है कि वो न्यू इंडिया को तामीर करना चाह रहे हैं।
यानी आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की थी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।
यही तो न्यू इंडिया का मतलब क्या है। ये जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट के नाम कहा गया था कि कास्ट और सब चीज खत्म होगी, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिला है, तो ये डेवलपमेंट के नाम पर मिला है, मगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए नहीं, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम पर। और अब डेवलपमेंट होगा तो सिर्फ हिंदुत्व का ही डेवलपमेंट होगा।
लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नारा, चुनाव के दौरान भी कहा गया, चुनाव के बाद भी कहा गया, सबका साथ सबका विकास, और इसी बात को अब इस चयन के बाद भी दोहराया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे?
मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, जिसमें वो मिसाल के तौर पर हेल्थ के प्रमोशन की बात करते हैं और उसमें लिखते हैं कि आयुर्वेदा से जो ताल्लुक है उसको प्रमोट करेंगे। बताइए क्या यूनानी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? यूनानी सिस्टम जो है वो तो हिंदुस्तान से इसका रिश्ता तारीखी है, 700-800 साल पुराना रिश्ता है और उसका जिक्र ही नहीं है। तो ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूँ जिससे साफ वाजे हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक महज एक नारा है और पूरा का पूरा सिर्फ हिंदुत्व ताकतों को ही, उन्हीं का डेवलपमेंट होगा, उसी को लेकर वो कोशिश करते रहेंगे।
योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद आपकी नजर में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अब आगे किस एजेंडा पर बात करेगी, क्योंकि 2019 की भी लगातार बातचीत हो रही है, विकास होगा या क्या होगा?
देखिए, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि बीबीसी को चाहिए कि आपके पास तो सबका रिकॉर्ड होता है, मेरी तकारीर का और सबकी तकारीर का, तो आप जिस शख्स को अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इनके कई ऐसे स्पीचेस हैं जो आज भी पब्लिक डोमेन में है, उन स्पीचेस को चला दीजिए बीबीसी पर और लोगों को बता दीजिए कि यही विकास होगा या सबका साथ सबका विकास होगा या क्या होगा। तो जब इस तरह की बातें पूरी पब्लिक डोमेन में है तो यही पैगाम बीजेपी देना चाहती है और लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, मोदी जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यकीनन उसका इनका लॉगिन नेम डेवलपमेंट है, मगर उसका पासवर्ड सिर्फ हिंदुत्व है।
ये थे AIMAM नेता असदुद्दीन ओवैसी। यूपी की करीब 21 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की तादाद 20% है, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। यूपी की अब तक की राजनीति में मुसलमान प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं और सपा बसपा और कांग्रेस जैसे दलों ने सीटों के बंटवारे में उनके हितों का ख्याल रखने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने कथित तौर पर मुस्लिमों को नकार कर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम विरोध की राजनीति करते रहे योगी आदित्यनाथ के हाथ में राज्य की कमान सौंपकर अपने हिसाब से विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने जब ये सवाल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से पूछा तो उन्होंने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी।
हमारे देखने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। जो जीता वो सिकंदर। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, इससे हमारा क्या लेना देना है? ना हमसे राय लेंगे, ना हमसे राय ली जानी चाहिए, ना ली गई है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं?
जो सरकार बनने जा रही है और खासतौर पर जो छवि रही है महंत आदित्यनाथ की, क्या आप इसके बाद कुछ देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, वो किस दिशा में आगे बढ़ सकती है?
देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि हमारा इससे क्या लेना देना हो सकता है? क्या हमारी चाहत पर नतीजे आए हैं? क्या हमने ये चाहा होगा कि हमारी पार्टी, जिसने इतना काम किया और समाज को एक रखने में जिसका यकीन रहा, वो जब इस बुरी तरह से पराजित हुई है? उसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से कारण हैं, सिर्फ एक राजनीतिक वजह ही नहीं है। कुछ हमारे अंदरूनी हालात भी ऐसे थे जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो समीक्षा होगी, सोचेंगे, हमारे बड़े भी, पार्टी के बड़े भी सोचेंगे क्या खोया, क्या पाया, क्यों खोया, क्योंकि ये बहुत सी मिली जुली वजहों का नतीजा है।
अल्पसंख्यक समुदाय जिसका कोई प्रतिनिधि विधायक के तौर पर नहीं है सरकार में, वो हिस्सा नहीं होगा।
इस बारे में कोई शिकायत करने की यूं जरूरत नहीं है कि एक राजनीतिक दल जीत कर आया है और जो उन्होंने जो माहौल सदी बना है और जो पूरे प्रदेश में नारे लग रहे हैं, जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उससे अगले मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है।
ये थे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जो कह रहे थे कि बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को पूरा अख्तियार है कि वो जिसे चाहे राज्य का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन यूपी के आम मुसलमान योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पीली कोठी इलाके में कुछ ऐसे ही लोगों से बात की।
इस समय वाराणसी के पीली कोठी इलाके में मैं हूँ, जो एक बुनकर बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर जानते हैं लोगों से कि क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में।
जी, मैं अंसार अहमद बोल रहे हैं। कोई भी हो, मतलब सरकार अच्छी चलाए और विकास और जो है हर चीज अच्छा चलाए, कारोबार बढ़िया चले।
हमारा नाम अनिशु रहमान है।
अच्छा है कि वो मतलब वजूद आला बने हैं, इसे हम लोग का कोई एतराज नहीं है, बशर्ते कि देश की का विकास होना चाहिए, और सबको जो जिसकी जो कमी है उसको उनको देखना है सुनना है, ताकि मतलब देश के हित में कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी इंसान को किसी बात की तकलीफ ना पहुंचे।
आम तौर पे योगी आदित्यनाथ को एक कट्टर चेहरे के रूप में देखा जाता है, क्या कह रहा है बनारस का जो मुस्लिम वर्ग है वो क्या मानता सोचता है, आप क्या मानते हैं?
अरे इंसाफ करें, कोई भी रहे इंसाफ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर बेताब है, और है क्या?
आप क्या उम्मीद करते हैं, वो शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की और एक कट्टर चेहरे के रूप में जाना जाता है, पूरा इलेक्शन बीत गया लेकिन बीजेपी की ओर से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया?
देखिए पहले तो मैं इनका बनना अशुभ मानता हूँ, लेकिन फिर भी इनको जब जगह मिली तो मैं वजीर आला भी मानता हूँ, जब वजीर आला हमारे हो गए तो हमारे भी हैं, इसलिए इनको काम बहुत सूझबूझ से करना चाहिए, मुस्लिमों का हित को नुकसान न पहुंचा, बस ये।
ये थे वाराणसी के पीली कोठी इलाके में रहने वाले मुसलमान शहरी जो बहुत नपे तुले शब्दों में योगी आदित्यनाथ के बारे में अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से और पूछा कि मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जैसे तमाम नामों को दरकिनार कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना उन्हें बीजेपी का कैसा फैसला लगता है?
बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि विकास के नाम पे चुनाव जो लड़ा गया, एक तरह से अब लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया गया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धोखा दिया गया, क्योंकि विकास के नाम पे वोट लेके एक ऐसे चेहरे को आगे करना कि भाई ये अब आपके मुख्यमंत्री बनेंगे जिनके सियासत का पूरा जो फाउंडेशन है वो फिरका प्रस्त नारेबाजी और एजेंडाबाजी से भरा हुआ है, ये अपने में हैरानगी पहुंचाने वाली बात है।
सिद्धार्थ, बीजेपी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, योगी से आखिर क्या हासिल करना चाहता है?
देखिए मुझे लगता है कि ये एक तो इसमें संदेश खुल्लम खुल्ला दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और तमाम भारत में कि विकास और सबके साथ सबका साथ, ये तमाम इन स्लोगन के बावजूद हिंदुत्व जो है ये कोर एजेंडा आइटम बीजेपी का रहता है और हिंदुत्व से जुड़े हुए तमाम जो एजेंडा हैं बीजेपी के इनको अब आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ उस सियासत का प्रतीक है, साथ साथ इसमें कास्ट का भी इशू है क्योंकि वो एक तरह से ठाकुर के नुमाइंदे माने जाते हैं और 60 के आसपास एमएलए जो है ठाकुर हैं और जिस तरह से डिप्टी सीएम्स का चयन किया गया है कि एक ब्राह्मण को बनाया गया और एक जो मौर्य साहब है उनको बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये जाति, हालांकि बीजेपी कहता है कि कास्ट इश्यू से आगे निकल चुका है, लेकिन ये भी एक तरह से याद दिलाने वाली बात है कि बीजेपी अपने कास्ट पॉलिटिक्स से भी मतलब कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पे भी अपने ये दुकान आगे बढ़ा रही है।
सिद्धार्थ, आलोचक ये कहते रहे हैं कि संघ ने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, क्या यूपी को लेकर भी ऐसी ही सोच है?
देखिए कहना बहुत मुश्किल है कि किस हद तक जाने के लिए बीजेपी तैयार होगी, आरएसएस के इरादे क्या हैं, लेकिन ये जिस तरह से जीतने के बाद आदित्यनाथ का बयान आया कि ये सो कॉल्ड मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ ये जनता का ये जनादेश है और बार बार जो है तमाम जो चुनाव के टाइम में जो उनके भाषण थे मतलब मुसलमानों के साथ एक तरह से उनका ऑब्सेशन रहा है, तकरीबन हर भाषण में वो हिंदू मुस्लिम इशू को जोड़ देते हैं, तो ऐसे सज्जन को, ऐसे व्यक्ति को आप जब मुख्यमंत्री बना देते हैं तो प्रयोगशाला मतलब ये तो एक तरह से एक डायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को अब उत्तर प्रदेश में आगे पूरी तरह से आगे बढ़ने की मतलब हरी बत्ती जो है दिखाया जा रहा है।
योगी के पक्ष और विपक्ष में क्या बातें जा सकती हैं?
पक्ष में कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बल्कि पिछले एक दो घंटे से मैं वही यूट्यूब में जाके उनके भाषण सुन रहा हूँ और जहर के अलावा मुझे और कोई चीज नजर नहीं आ रही है और यही बात हो सकता है कि आरएसएस जिन्होंने इनको शायद इनके नेतृत्व को पुश किया होगा, शायद जो चीज आपको और हमको और जो इस देश की जो मेजॉरिटी है जो खराब लगती है, हो सकता है कि नागपुर में बैठे हुए जो रिमोट कंट्रोल है उनको ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है बेहद खतरनाक है उत्तर प्रदेश के लिए और हिंदुस्तान के लिए।
सिद्धार्थ, एक आखिरी सवाल, क्या ये संभव है कि जो जिस तरह की छवि योगी आदित्यनाथ की बनी है 2019 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है और उनके बारे में जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो एकदम बदले हुए रूप में सामने आए?
मैं तो ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है लेपर्ड डजंट चेंज हिज स्पॉट्स और ये योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से बीजेपी का इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि इतनी भारी बहुमत के साथ 2017 में जीते हैं, क्योंकि लोगों ने मोदी साहब के वादों पे विश्वास किया। दो साल बाद अगर बीजेपी उन वादों पे खड़ा नहीं उतर पाता तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अलग अलग किस्म के की पॉलिटिक्स वहां पे खेली जाएगी, जिससे लोगों को गुमराह करके दोबारा वोट्स लेने की कोशिश की जाएगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, जो कह रहे थे कि अगले दो साल बीजेपी और योगी की राजनीति के लिए बेहद अहम होंगे और 2019 के लोकसभा चुनाव तक पता चल जाएगा कि विकास और हिंदुत्व के एजेंडे में से योगी आदित्यनाथ किसे प्राथमिकता देते हैं। और अब सीधे चलते हैं लखनऊ अपने सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास, जो लखनऊ से छपने वाले तमाम अखबारों की सुर्खियों पर नजर दौड़ा रहे हैं। समीर, योगी आदित्यनाथ के चयन पर आज के अखबार क्या टिप्पणी कर रहे हैं?
जी अवधेश, सारे अखबारों का पहले पेज और अंदर के भी तमाम पेज जो है इसी खबर से भरे हुए हैं। अब एक तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ और बाकी जो प्रतिभागी थे इस रेस में शामिल थे वो लोग क्यों बाहर हो गए। बहरहाल अगर हेडलाइंस की बात की जाए तो अमर उजाला लिखता है सिंहासन तक पहुंचा सन्यासी। अखबार ने एक त्वरित टिप्पणी भी लिखी है, लिखता है योगी राज, भाजपा ने तय कर ली 2019 की दिशा, पर शेर की सवारी के भी अपने खतरे। और इसी जगह पर अखबार ने शेर के बच्चे को दूध पिलाते हुए योगी की एक पुरानी तस्वीर भी छापी। बात अगर दैनिक जागरण की करें तो दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है योगी को राज, और दैनिक जागरण ने भी योगी की एक बड़ी सी तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें वो चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि नई सरकार के सामने अपेक्षाएं पूरी करने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं हिंदुस्तान की हेडलाइन है उत्तर प्रदेश में योगी राज, जबकि इंडियन एक्सप्रेस लिखता है फॉर उत्तर प्रदेश बीजेपी हैज अ न्यू स्पेलिंग फॉर विकास योगी आदित्यनाथ। और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक एंड डीमोनिटाइजेशन एनदर रेडिकल मूव, बीजेपी सीन टू बी सीकिंग मेजोरिटी कंसोलिडेशन अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की कोशिश है ये जो फैसला लिया गया है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का। और इस कई संभावित मंत्रियों की सूची भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है, श्रीकांत शर्मा, सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश महाना, जो लोगों के बारे में कहा गया है कि ये बन सकते हैं मंत्री। कि स्वतंत्र भारत लिखता है कि योगी के साथ 45 मंत्री ले सकते हैं शपथ। और आखिर में अमरेश, राष्ट्रीय सहारा की बात करें, राष्ट्रीय सहारा की जो हेडिंग है कांशी राम उपवन में आज अद्भुत दर्शन, सीएम के शपथ ग्रहण के लिए स्थल धज कर तैयार है स्थल। ये वही जगह है जहाँ की आज योगी कैबिनेट शपथ लेगी। और अखबारों ने अनुमान जताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1,00,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
जी समीर, लखनऊ से अखबारों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक पारदर्शी सरकार देने का वादा किया है। पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में रावत ने अपनी प्राथमिकताओं में महिलाओं, किसानों और युवाओं का खास तौर पर उल्लेख किया, लेकिन रावत के एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा अंदर खाने पार्टी के जीत कर आए तमाम विधायकों को संतुष्ट करने का भी होगा। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान।
उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके अलावा 7 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गयी। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। खास बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मंच पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं से हंसते बोलते देखे गए। देहरादून के परेड मैदान पर हुए समारोह के लिए जुटे समर्थकों की भीड़ मोदी के भाषण का इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर विदा ली। देर शाम अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात की और अपना एजेंडा सामने रखा।
जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए, माँ बहनों के सम्मान और सुरक्षा, किसानों के लिए जो भारत सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद और अच्छा बीज, ये हमारी प्राथमिकता है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में कांग्रेस के प्रमुख बागियों हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य को जगह मिली है। 3 साल पहले ही बीजेपी में आ चुके सतपाल महाराज ने भी नंबर 2 पर शपथ ली। चुनाव तारीख की घोषणा से एन पहले बीजेपी में गए यशपाल आर्य को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। बाकी 4 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं। 70 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 12 से ज्यादा सदस्यों का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता, लिहाजा अब त्रिवेंद्र रावत 2 और सीटें भर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री बने पूर्व कांग्रेस नेता सुबोध उनियाल।
राज्य को पहले ट्रैक में लाना, व्यवस्थित करना और व्यवस्थित करने के बाद जन भावनाओं को, जन अपेक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, जिसमें पलायन है, रोजगार की संभावनाएं हैं, इस पर हमारी सरकार काम करेगी।
सरकार का पहला दिन था तो अच्छी अच्छी बातें खूब सुनने को मिली। सरकार में नंबर 3 की हैसियत वाले और 2 दिन पहले तक सीएम रेस में शामिल प्रकाश पंत।
इस राज्य की जो आर्थिक माली हालत खराब है, 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा हो गया है, 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारी रिसोर्सेज नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए इस सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और एक ही सूत्र लेकर के हम काम करेंगे कि पंक्ति के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य।
रावत मंत्रिमंडल में ठाकुर, ब्राह्मण और दलित प्रतिनिधित्व तो ठीक ठाक हो गया है, लेकिन आस लगाए बैठे कई विधायक कतार में हैं। इसकी भरपाई क्या लाल बत्तियों से होगी या रावत सख्त संदेश देने की हिम्मत रख पाएंगे? जाहिर है विधायकों के संख्या बल को देखते हुए ये कोई आसान काम नहीं होगा। उत्तराखंड में कुर्सी की खींचतान या सरकार को अस्थिर करने में विपक्ष कभी असरदार नहीं रहा है। अब तक के तख्तापलट, पार्टी में आंतरिक टकराव, सत्ता में हिस्सेदारी की तीखी लालसा और गुटबाजी से ही संभव हो पाए हैं। शिव जोशी, BBC देहरादून।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल जब खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 6 विकेट खोकर 360 रन था। स्टंप के समय चेतेश्वर पुजारा 130 और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा 18 रन बनाकर खेल रहे थे। चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर का ये 11वां शतक है। वो अभी तक 328 गेंदों का सामना करने के साथ ही 17 चौके भी लगा चुके हैं। कल भारत ने 1 विकेट पर 120 रन से आगे खेलना शुरू किया और दूसरे दिन 42 रन बनाकर नाबाद रहने वाले सलामी बल्लेबाज मुरली विजय कल 82 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद स्टीव ओकीफ की गेंद पर विकेटकीपर मैथ्यू वेड के हाथों स्टंप हुए। उनके बाद कंधे की चोट से परेशान कप्तान विराट कोहली मैदान पर उतरे, लेकिन वो केवल 6 रन बनाकर तेज गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ को कैच दे बैठे। विराट कोहली के बाद अजिंक्य रहाणे 14, करुण नायर 23 और आर अश्विन भी केवल 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कल पूरे दिन के खेल में भारत ने सुस्त रफ्तार से बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए और 5 विकेट गवाए। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 59 रन देकर 4, जोश हेजलवुड ने 66 रन देकर 1 और स्टीव ओकीफ ने 117 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी के आधार पर भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 91 रन पीछे है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका ने वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन कल न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए केवल 81 रनों का लक्ष्य था, जो उसने हाशिम मामला के नाबाद 38 रनों की मदद से केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन कल श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 268 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 139 रनों की बढ़त मिली थी, लिहाजा अब श्रीलंका के पास 139 रनों की बढ़त है और उसके 2 विकेट बाकी हैं।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश में भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शपथ लेंगे। फ्रांस के सुरक्षा बलों ने पेरिस के ओरली एयरपोर्ट पर तैनात एक सैनिक की बंदूक छीनने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को मार गिराया है। उत्तर कोरिया ने टोंग चांगरी रॉकेट लॉन्च स्टेशन में एक नया विकसित इंजन प्रक्षेपित किया है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।